नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लगता है दिल्ली में भी ईडी की कार्रवाई के बाद का दूसरा चरण शुरू हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे कि उनकी सरकार गिराने और पार्टी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आज वो बात सच हो गई? ईडी के छापे के बाद जब भी विपक्षी दल का कोई सदस्य इस्तीफा देता है तब वो कहां जाएगा, इसे लेकर ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार या तो वह सीधे बीजेपी में जाता है या बीजेपी के सहयोगी दल में जाता है या कुछ दिन इंतजार करता है। दिल्ली के पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद के साथ साथ विधायकी और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद को अब अपनी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी लगने लगी है, इतनी डूबी हुई कि विधायकी तक से इस्तीफा दे दिया।
लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है।
ईडी के छापे के बाद विपक्षी दलों में भगदड़ मचने के जो पैटर्न रहे हैं उसमें कोई अपने नेता को लेकर, कोई सरकार पर आरोप लगा दे तो कोई हैरानी की बात नहीं। राजकुमार आनंद पहले नहीं है, उनसे पहले कई लोग कई दलों के ऐसा कर चुके हैं। यही वो राजकुमार आनंद थे जिनके घर पर और अन्य दफ्तरों में नवंबर के महीने में ईडी के छापे पड़े थे, तब बीजेपी ने इनका इस्तीफा मांगा। नवंबर से लेकर 9 अप्रैल तक उन्हें ना तो बाबा साहब की याद आई और ना ही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आई। तब की मीडिया रिपोर्टिंग बताती है कि राजकुमार आनंद पर हवाला माध्यमों से लेन देन और कस्टम के 7 करोड़ की ड्यूटी नहीं चुकाने के मामले में छापे पड़े थे। ये नवंबर की खबरें हैं। क्या उस समय से राजकुमार आनंद को नहीं दिखा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है? जब उनके यहां छापे पड़ रहे थे तब पार्टी उनके साथ खड़ी रही। सौरभ भारद्वाज ने इनके पक्ष में बयान दिया था। आज वही सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि एक मंत्री को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है।
पटेल नगर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यह बात राजकुमार आनंद जानते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। वे विधायक इसलिए जीते क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े हैं, बहुत साल कई पार्टियों में रहे, उनको पता है क्या हश्र होता है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बावजूद उनसे रिजाइन कराया गया, पार्टी से रिजाइन किया, पद से रिजाइन किया, क्योंकि पार्टी से रिजाइन कर दिया तो वो विधायक भी नहीं रहे। कौन आदमी ऐसा करेगा? किसी को पार्टी से अगर दिक्कत भी होगी तो ये कहेगा ठीक है, मैं अपना टेन्योर पूरा करता हूं, जनता के बीच में अपनी जगह बनाता हूं, टेन्योर पूरा होगा, पार्टी से रिजाइन करेंगे, जो पार्टी पसंद आएगी उससे लड़ेंगे। ये तो सुसाइड है, ये तो आग में कूदना है। कोई आदमी क्यों सुसाइड कर रहा है? उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई? आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रिजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपने देखा ही होगा, मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी को कि आज उसने इस देश के प्रजातंत्र की वो हालत कर दी है जिस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि इस देश में लोग आजादी से जिएंगे, आजादी से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। उस देश की हालत आज ये कर दी है कि चुने हुए मंत्री जो है इस तरह से रिजाइन कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है।
क्या राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल होंगे? उन पर हवाला लेन देन और कस्टम ड्यूटी में हेरा फेरी के मामले में ईडी ने छापे मारे थे। उस समय तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस्तीफा मांगा, जिसे आज आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया।
आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि आज धरने और ड्रामे का समय नहीं है, आज अपने दायित्व को निभाने का समय है, जांच में हिस्सा बनने का समय है, विक्टिमहुड कार्ड नहीं भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। और जो पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर हुआ, आज वो पार्टी आईएसी से हटकर जेएफसी बन चुकी है, जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन हो रहा है। मतलब सोचिए कि जो लोग कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जब सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट राहत नहीं देता, करप्शन के प्रमाण सामने आ चुके हैं, तो कभी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं और फिर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन का नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और बताइए कि क्या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को राहत नहीं देता तो कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है।
दिल्ली सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा उन तमाम आशंकाओं को सच साबित कर रहा है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इस पार्टी को भी शिवसेना और एनसीपी की तरह तोड़ दिया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने मीडिया से कहा कि जब वे कहा करते थे कि पार्टी तोड़ने की साजिश है तो मीडिया उल्टा उनसे सवाल करता था, यकीन नहीं करता था। लेकिन राजकुमार आनंद का इस्तीफा बता रहा है कि उनकी आशंकाएं गलत नहीं थीं।
आज के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को यह शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं, ये शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। यह इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, यह भी तय होगा।
एक पैटर्न आप और देखेंगे, दल बदल के कानून का इस्तेमाल नहीं होता है जिससे लगे कि पार्टी को तोड़ा जा रहा है। पार्टी के सदस्यों से इस्तीफा दिलवाया जाता है ताकि लगे कि पार्टी नैतिक रूप से कमजोर होती जा रही है और उसमें भगदड़ मच गई है। आप ये मत भूलिए कि गुजरात में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 4 सीटों पर इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के चुने हुए विधायकों ने अपनी पार्टी और विधायकी से ही इस्तीफा दे दिया। अब यही 4 लोग फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 6 पर कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने वाले विधायक ही बीजेपी से उम्मीदवार बने हैं। तो यह एक तरीका अपनाया जा रहा है कि किसी सरकार को गिराने का और पार्टी को तोड़ देने का, जिससे लगे कि सब अपने आप हो रहा है, बीजेपी तो कुछ कर भी नहीं रही, ईडी का तो बिल्कुल भी हाथ नहीं। बीजेपी 2 राज्यों में इसी लोकसभा चुनावों के साथ साथ 2 राज्यों में विधायकी छोड़ने वाले 10 कांग्रेसी विधायकों को अपना टिकट देकर उन्हें फिर से विधायक बनवा रही है। इस तरह की सेवा आज की तारीख में शायद ही कोई दूसरी पार्टी करती होगी, या वो पार्टी करा रही है जो देश में बार बार चुनावों के होने से परेशान है, उसे बीमारी बताती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, लेकिन दूसरे दलों के विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर फिर से उन्हें उपचुनाव में अपनी पार्टी का टिकट देती है। इस पैटर्न को देखते हुए अगर राजकुमार आनंद यह कहें कि राज्यसभा सांसदों में दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बात नहीं जमती है। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि उनका इस्तीफा क्यों हुआ होगा।
बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहां 13 राज्यसभा सांसद है, दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है।
तो क्या राजकुमार आनंद के अलावा और भी विधायक हैं, सांसद हैं, जिनकी अंतरात्मा अब जागने वाली है और वे आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने लग जाएंगे? 3 बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को हराया है। भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी के वर्चस्व के 10 साल पूरे हो गए, मगर दिल्ली में वे कमल नहीं खिला सके। तो क्या अब इस हताशा का यही रास्ता निकाला गया है कि पार्टी को ही तोड़ दो, मिटा दो, नेताओं को जेल में डाल दो? जब कांग्रेस में बगावत हो रही थी, ईडी के डर से पार्टी टूट रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बीजेपी में चला जाता है। 2018 में रोहिणी में केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को भीतर से समर्थन दे रहे हैं। उस समय केजरीवाल भारत की राजनीति में तेज गति से गिरते चले आ रहे चट्टान के गोले को नहीं देख सके, जिसके नीचे कांग्रेस ही नहीं कई और पार्टियां और अब उनकी पार्टी भी दबती नजर आ रही है।
आपको दिखाना चाहता हूं, यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था, 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सब ने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेके कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा, फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना, फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना, तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो।
आम आदमी पार्टी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर ने 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं। विकास योगी के इस ट्वीट को हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इन 2 तस्वीरों में एक आदमी को लेकर इशारा किया है कि राजकुमार आनंद के पीछे वही शख्स दिख रहा है जो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ दिख रहा है। विकास योगी ने लिखा है कि ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है, फोटो साबित करता है कि भाजपा ने सब कराया है। केरला हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश दिया, पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक को ईडी के समन का जवाब देना था। कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव बीत जाने तक उन्हें जवाब के लिए मजबूर करना अनुचित होगा। थॉमस आइजैक सीपीएम के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जस्टिस टीआर रवि ने कहा कि मैंने सारे साक्ष्य देखे हैं, कुछ पर जवाब की जरूरत भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर उम्मीदवार को परेशान करने की जरूरत है, चुनाव में 1 महीना ही रह गया है। अरविंद केजरीवाल के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव के समय को अहमियत नहीं दी। चुनाव के समय और इसमें भागीदारी के आधार पर ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका में कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन उनकी याचिका रद्द हो गई। केरला हाईकोर्ट ने चुनाव के समय को प्राथमिकता दी है। भारत की राजनीति में विपक्ष खाली होता जा रहा है, लोकतंत्र की इसकी नदी सूखती जा रही है। बीजेपी लगता है सूखी नदी में ही तैरकर 2024 का चुनाव पार कर लेना चाहती है। अब बीजेपी को परवाह भी नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों ने भी कहना और देखना बंद कर दिया है। राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन उनके इस्तीफे के पीछे बीजेपी का हाथ देखा ही जाएगा। राजनीति की इस गंगा में शपथ की पवित्रता का हाल वही है जो गंगा सफाई योजना का है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।